مشن 29 نمبر کے رجسٹر میں 88 پیج پر 31 تک 89 کا پراتھ کلاس. میٹھے میٹھے تم بچے ہو لکی ستارے, تم جانتے ہو ہم شانتی دھام کو بھی یاد کرتے ہیں, باپ کو بھی یاد کرتے ہیں. باپ کو یاد کرنے سے ہم پوتر بن کر کے گھر چلے جائیں گے. یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیالات کرتے ہو نا, باپ اور کوئی تکلیف نہیں دیتے. جیون مکتی کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ سب پرشارتھ کرتے ہیں مکتی کے لیے, پرنتو مکتی کا بھی ارتھ نہیں سمجھتے. مکتی مانے کیا, کس سے مکتی؟ جیون سے مکتی, ہاں کرم بندھنوں سے بھی مکتی, دکھ دردوں سے بھی مکتی, جنم جرا مرن کے دکھوں سے مکتی. مکتی مانا چھٹکارا, اور چھٹکارا دو پرکار سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شریر چھوڑ کر کے چھٹکارا, وہ مکتی تو سب کو ملتی ہے, لیکن کچھ ایسی بھی آتما وشیش ہیں جو شریر نہیں چھوڑتی, جیون ان کا رہتا ہے, اور جیون میں رہتے ہوئے بھی دکھ دردوں سے پرم بندھنوں سے مکت ہو جاتی. تو مکتی شیش ہوئی یا جیون مکتی شیش ہوئی؟ جیون مکتی شیش ہے. کوئی کہتے ہم برہم میں لین ہو جائیں, پھر ہم آئیں گے ہی نہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم کو اس چکر میں ضرور آنا ہی ہے. اب تم بچے ان باتوں کو سمجھتے ہو, تم بچوں کو معلوم ہے ہم سدرشن چکردھاری لکی ستارے. کیسے ستارے؟ لکی بھی ہیں اور سدرشن چکردھاری. اپنی آتما کے 84 کے چکر کو اپنے پرشارتھ سے دیکھنے والے ہیں. جیسے آسمان میں 9,00,000 ستارے گائے جاتے ہیں, چمکتے ہیں, ایسے قیامت کے سمے میں یہ بھی 9,00,000 ستارے دھرتی کے ہیں چیتنیہ, جو سارے سنسار میں چمکتے. لکی کہا جاتا ہے تقدیر وان کو. اب تم بچوں کو تقدیر وان باپ ہی بناتے ہیں, دیوتاؤں سے اونچی تقدیر تو اور کسی کی ہوتی نہیں, اور تم ہو پکے دیوتا, پورے 84 جنم لینے والے آل راؤنڈ پارٹ دھارے. تمہاری جیسی اونچی تقدیر اور کسی کی ہوتی نہیں. جیسا باپ ویسے بچے ہوتے ہیں. باپ آل راؤنڈ پارٹ دھاری ہے تو بچے بھی آل راؤنڈ پارٹ دھاری ہوں. کوئی باپ ساہوکار ہوتے, کوئی باپ غریب بھی ہوتے ہیں. تم بچے جانتے ہو ہم کو تو بے حد کا باپ ملا ہے. تو جو جتنا لکی بننا چاہے وہ بن سکتے, جتنا ساہوکار جو بننا چاہے وہ بن سکتا ہے. باپ کہتے ہیں جو چاہو سو پرشارتھ سے لے لو, سارا مدار پرشارتھ پر ہے. پرشارتھ کر جتنا اونچ پد لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو. اونچ سے اونچ پد ہے یہ لکشمی نر ہے. جتنا تم باپ کو یاد کریں گے, تو چارٹ بھی اچھا رکھیں گے. چارٹ بھی ضرور بھرنا, کیونکہ تمو پردھان سے ستو پردھان ضرور بننا ہی ہے. بدھو بن کر کے ایسے ہی نہیں بیٹھنا ہے. باپ نے سمجھایا بھکتی مار گیا تھا پرانی دنیا, اب نئی دنیا ہونی ہے. باپ آتے ہی ہیں ستو پردھان دنیا میں لے جانے کے لیے, आने का मकसद क्या है? आते हैं तुम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए, और वो काम पूरा न करें, सिर्फ ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा के चले जाएं वापस, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला है। कोई हद की मेहमानियों अटारियों का सुख देने वाला नहीं है कि सेंटर दे जाएगा, म्यूजियम दे जाएगा, शांति धाम सुखधाम ईटों का वर्षा दे जाएगा। नहीं, ये है गलत फहमी। वो तो बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति देता है। समझाते तत्व प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख का वर्षा पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख होगा, रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख होगा। हिसाब सारा पाप बदला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण लाने के लिए कोई खास और दूसरा पुरुषार्थ करने की बात नहीं है, इसमें कोई दिखावा करने की भी बात नहीं है। जो जितना याद करेगा, याद की अवस्था में टिकेगा, तो दैवी गुण स्वतः ही आ जाएंगे। सत्व प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आते ही करनी है, हमारे में कितना दैवी गुण आए। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहते हो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? बैठा हुआ है इसका मतलब बिंदी के लिए नहीं बोला कि बैठा हुआ है। बिंदी के बैठने चलने सोने की बात नहीं है। बिंदी जरूर किसी शरीर में बैठा हुआ है पुरुषार्थ कराने के लिए। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो है, मन मना भव मध्याजी भव। पहले मन मना भव क्यों, बाद में मध्याजी भव क्यों? क्योंकि जब तक मन मना भव नहीं हुए तब तक मध्याजी भव नहीं हो सकते। मन मना भव का मतलब जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प, संकल्प मात्र में भी विरोध आवास न रहे। वाचा और कर्मणा तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसी स्टेज बनती है मन मना भव की, तो मध्याजी भव भी ऑटोमेटिकली हो जाए। मध्याजी भव का मतलब है मध्याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला भव, माना मेरे लिए कर्म करने वाला भव। अपने कल्याण के लिए नहीं, किसके कल्याण के लिए? मेरे लिए। परमात्मा का भी कल्याण करना होता है क्या? उसका कल्याण हुआ पड़ा है क्या है? सुप्रीम सोल की ये बात नहीं है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं, उन्हीं के ऊपर आकर के सूर्य ग्रहण की बात आती है। वही सबसे ऊंचते ऊंच पाट बजाते हैं, वही सबसे नीचते नीच भी गिर जाते हैं। अगर उनकी उठती कला है, उनकी चढ़ती कला हो जाए, तो सबकी चढ़ती कला हो जाती। तो मध्याजी भव, मेरे लिए कर्म करने वाला भव, मन मना भव बनेंगे तो सारे कर्म बाप के लिए ही होंगे। बेहद बाप को पहचान जाते हो, वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। बेहद मन, हाँ, थोड़े से बच्चों का बाप नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी जो वर्तमान में है उनका बाप नहीं, 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं उन सब का बाप। इसके लिए पहले भी वाणी में बोला, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलती। अब मिलने की रीति भी अलग अलग हो सकती है। तो कोई तो दृष्टि मात्र से ही मिलेंगे, दूर से ही मिलेंगे, कोई ट्रांजिस्टर की आवाज से ही मिलेंगे, कोई टीवी में देख करके ही संतुष्ट हो जाएंगे, कोई क्लोज कॉन्टेक्ट में आकर के मिलेंगे। तो मिलना सबका अपना अपना है, ये भी पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। पूर्व जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे जो प्राप्ति की है, वो प्राप्ति उनकी अभी संगम युग में खींचेगी, शूटिंग कराएगी। तो बेहद के बाप दो हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं प्रत्यक्ष होते हैं। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु वो है आत्माओं का बाप, और प्रजापिता वो है मनुष्यों का पिता। प्रजापिता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रत्यक्ष न हो, प्रवेश न करे। और सुप्रीम सोल शिव बाप वो भी संसार के सामने 5 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक वो प्रजापिता में प्रवेश न करे। कौन सा मन? उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है क्या? अलग अलग करेंगे तो विदेशी साबित हो जाते, विदेशी सिर्फ निराकार को याद करते, इब्राहिम को सुतराय से किसे याद करते, ज्योति को याद करते, तो वो स्वर्ग में नहीं आते। तो हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है, तो हमारी याद भी कैसी है? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हमारी कोई याद निवृत्ति मार्ग की नहीं है कि हम सिर्फ सबको याद करें, सब से लगाव लग जाए। नहीं, हम तो शिव को याद करते हैं, वो भी चैतन्य। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो मुरली में बोला कि वो तो गर्भवत है। हम तो चैतन्य को याद करते हैं, चैतन्य की परिभाषा बताइए, बोलता डालता चलता फिरता। तो पाप तो बैठा हुआ है, नालिश देने वाला है। तुम बेहद के पाप को पहचान जाते, पतित के पावन बनने का रास्ता भी वो बेहद का बाप ही समझाते हैं। ये रास्ता और कोई नहीं बता सकता कि हम पतित से पावन कैसे बनते हैं। पावन देवताएं थे, वो पतित कैसे बने हैं? पावन देवताएं थे, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति सब पावन थी, पवित्र दृष्टि थी, पवित्र वृत्ति थी, पवित्र कर्म थे, कर्म इंद्रियां थी। वो व्यभिचारी कैसे बने? अनेक अनेक धर्म पिताएं आए, धर्म के लोग आए, उनके संग के रंग में आते आते पवित्र देवताएं अपवित्र बन गए, व्यभिचारी बन गए, असुर बन गए। तो अनेकों के संग के रंग में आने से नीच गए। सत्युगुण में ये परंपरा नहीं होती है। प्रतिवतेता में क्या परंपरा होती है? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। दृष्टि और वृत्ति मात्र से भी कभी भी विचार नहीं होता। और द्वापर युग में जैसे ही इब्राहिम आता है तो उनमें तो उस रसम रिवाज का उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग में क्या रसम रिवाज होती है। इब्राहिम और उसके फॉलोअर्स को ये मालूम ही नहीं है कि अब भी विचारी स्टेज क्या होती है। उनकी तो रग रग में भी विचार समाया हुआ, बिना भी विचार के उनकी जनरेशन वृद्धि को नहीं पा सकती, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो जब से आते तब से भी विचार का पोषण शुरू हो जाता है। रावण जब से आते हैं तब से द्वापुर होते द्वैत शुरू होता है। तो देवताएं उसी समय पावन कैसे बनेंगे? पावन से पतित बने अनेकों के संग के रंग में आने से, अब पतित से पावन बनेंगे उल्टा कर, एक के संग के रंग में आएंगे तो पतित से पावन बनेंगे। लेकिन उस एक को पहचानना पड़े, ऊंचते ऊंचे पाप, ऊंचते ऊंचे पार्टधारी को कहते हैं परमात्मा पार्ट। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं है, गीता में भी लिखा हुआ है आटे में नमक मिसल है। अपन को आत्मा समझो, देह के सब धर्मों को भूल जाओ। तुम शुरू में नंगे थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब तमो प्रधान है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेगी, उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? जैन है फॉलो फादर, जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, यह पुरुषार्थ कराने वाले नहीं है। कौन? ब्रह्मा। वो बाप तो पुरुषार्थ करते नहीं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष माना आत्मा, और अर्थ माना लिए। आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ किया जाए उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो ये तो पुरुषार्थ नहीं करते। कौन? ब्रह्मा पुरुषार्थ नहीं करते। ब्रह्मा को तो पुरुषार्थ करना ही है, लेकिन शिव बाप कोई पुरुषार्थ अपने लिए नहीं करते। वो तो निष्कामी है, उसको कोई अपने कल्याण की कामना नहीं है। वो पुरुषार्थ कराते हैं हम बच्चों को। गायन भी क्या है? करण करावनहार, ब्रह्मा के द्वारा करणहार का पाठ बजाते हैं। और जब ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो बाद में करावनहार के पाठ के रूप में, पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष होते। तो वो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फादर और मदर, मदर गुप्त है, ये गुप्त मदर फादर हैं। फादर तो देखने में आते लेकिन मदर गुप्त है। क्या मतलब? ब्रह्मा के तन में जब बोल रहे हैं कि मदर गुप्त है, फादर को देखने में आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? गीता माता गुप्त हुई, मतलब कि ब्रह्मा भले बड़ी माँ का पाठधारी था, उसने पूरा पाठ बजाया प्यार देने का, जन्म देने का, पालना करने का, लेकिन तन पुरुष का था। तो पुरुष का तन होने के कारण उसको माता, माँ का असली रूप में नहीं कहा जा सकता। इसलिए ब्रह्मा का पुरुष चोला माता के रूप में पूजा नहीं जाता। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा के मंदिर पूजा करने के लिए नहीं बनाए जाते, मूर्तियां नहीं बनाई जाती, पूजा नहीं होती। पूजा कौन से रूप की होती है? जगदम्बा माता के रूप की पूजा होती है। तो वो जगदम्बा माता का स्वरूप कौन सा? वो वही स्वरूप है जो यज्ञ के आदि में जो माता ब्रह्मा और सरस्वती को बिटल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, बाद में वो बच्चे अपना कार्य करके चले गए। वो तो बाप समान आत्माएं हैं जो बीजारोपण करके चली गई, दोबारा फिर आते, क्योंकि ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो अगले जन्म में पूर्व जन्म के ब्राह्मण ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध लेकर के आती, दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में पुरुषार्थ करती। तो उन्हीं ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा सरस्वती की सोल फिर से प्रवेश करके पाठ बजाती। तो दादा लेखराज ब्रह्मा नाम तो था, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माना माँ, और काम भी था, लेकिन प्रैक्टिकल में वास्तव में वो पार्ट माता का नहीं। वो मदर गुप्त है का मतलब यज्ञ के आदि में भी थी, और वही मदर अंत में भी फिर प्रत्यक्ष होती है, जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो फादर तो देखने में आते हैं, ये अच्छी रीति समझने का है। इसलिए संदेश में भी कहा गुलजार दादी के थ्रू कि तुम बच्चे मदर को नहीं पहचान सकेंगे। मम्मा कहाँ कार्य कर रही है ये तो बाबा ही बतलाएंगे, तुम बच्चे नहीं जान सकते कि मम्मा कहाँ है। तो बुक तो मदर फादर है ना, ऐसा उनकी पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे ये फादर याद करते हैं, ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में क्यों कहते हैं? बहुत जन्मों का अंत का जन्म कौन सा हुआ? 84वां जन्म। और अंत का भी अंत का पीरियड कौन सा हुआ? जो अंत का पीरियड हुआ उसका भी अंत मैंने प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, कहते हो, लेकिन इसका अर्थ अर्थ नहीं समझते। क्योंकि बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी भी नहीं है कि नर से नारायण बनने का पार्ट अच्छा है या नर से प्रिंस बनना अच्छा है। राधा कृष्ण क्या बनेंगे? वो तो नर से प्रिंस बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट है नर से प्रिंस प्रिंसेस बनने का, उसका कोई गायन नहीं है। गायन किसका है? नर से नारायण बनने का गायन है। तो वो भी बात युक्ति बतलाते हैं, जैसे तुम बन सकते हो वो युक्ति बतलाते हैं। ये भी जानते हो तब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे क्या? जैसा बाप डायरेक्शन देते हैं वैसा ही सब फॉलो करने लग पड़े, ऐसा तो ब्राह्मण परिवार में नहीं पढ़ाई सब पढ़ेंगे। बाप चाहते हैं सब नर से नारायण जैसे बने, लेकिन सब ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये एम ऑब्जेक्ट है तो फॉलो फादर। अभी का ही गायन है क्या? नर से नारायण बनने का गायन भी संगम युग का गायन है, कोई सतयुग का गायन नहीं है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते, तो ज्ञान हम अभी लेते हैं, पढ़ाई हम अभी पढ़ते हैं, तो उसकी प्रारब्ध कब अगले जन्म में पाएंगे? डॉक्टरी की पढ़ाई यहाँ पढ़े और पढ़ाने वाले कह दें कि अगले जन्म में जाकर के तुम डॉक्टर बन जाना, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? लेकिन यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट बुद्धू हैं जो समझते हैं कि यहाँ हमने बाप से पढ़ाई भी पढ़ी है और अगले जन्म में हम जाकर के देवता बन जाएंगे। तो वास्तव में ये ठीक बात नहीं है। असली बात यही हम पढ़ाई पढ़े और यही हम प्रारब्ध भी पद भी हम यहाँ ऊंच पाए। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रंग है ना। वो सन्यासियों के फॉलोअर्स फॉलो तो करते नहीं, क्या नहीं फॉलो करते? जो गृहस्थी होते हैं वो सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं। सन्यासी वो घर बार छोड़ के लंगोट लगा के बैठ गए, सब कुछ उसने त्याग दिया, और गृहस्थी फॉलो करते हैं क्या? फॉलो तो करते नहीं। वो सब हैं ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं। किनको? सन्यासियों को ज्ञान ईश्वर नहीं देता है। कौन देता है? ब्रह्म अथवा ब्रह्मा ज्ञान देता है। ब्रह्म तो ईश्वर के रहने का स्थान है। ब्रह्मा कहो या ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा के पेट से ही सारी सृष्टि निकलती है। ब्रह्मा के संकल्पों से ही बुद्धि रूपी पेट में जो संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों से ही सबका जन्म होता है। तो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट निवास स्थान हो गया, आत्माओं का भी निवास स्थान हुआ और परमात्मा का भी निवास स्थान हुआ। तो वो तो सिर्फ ब्रह्म को ही याद करते हैं, ब्रह्म अथवा ब्रह्मा को ही ईश्वर समझते हैं। कौन? सन्यासी कौन से दुनिया भी सन्यासी ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया के सन्यासी ब्रह्मा को ही भगवान समझते हैं। अरे वो तो रहने का स्थान है, तुरिया जड़ तत्व है, कोई भगवान का पार्ट नहीं है, परमात्मा पार्ट नहीं है। तो उन सन्यासियों को ईश्वर ज्ञान नहीं देते, वो ईश्वर से ज्ञान लेते नहीं है, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते। ब्रह्म की हिस्ट्री बैठ करके सुनाएंगे, ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो वो हिस्ट्री तो सुनाएंगे, लेकिन ईश्वर के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देता है। वो सदा है शास्त्रों का ज्ञान, यहाँ तुमको पाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है। तो ये अच्छी रीति नोट करो कि तुमको ज्ञान कौन देता है और उनको ज्ञान कौन देता है, तुम भूल जाते हो। ये दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो नहीं जा सकेंगे, बाप के घर में वापस कौन जा सकेंगे, जो पावन बनेंगे वही वापस जा सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से बनना है या फिर सजाएं खाकर के जाएंगे, फायदा किसमें होगा। जो अपने पुरुषार्थ से योग बल से प्रीति के बल से लगाव से परमात्मा में जो लगाव पैदा हो जाता है, उसके आधार पर जो परिवर्तन होंगे तो उनका पद भी ऊंचा होगा और सजाएं भी कम हो जाएंगी, और जिनको सजाएं ज्यादा खानी पड़ेंगी उनका पद कम हो जाएगा और जाएंगे भी बाद में, तो बहुत घाटा हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुप चुप जरूर होना है, फिर जज भी करना है, दुख का घाटा चुप चुप करना है, और फिर जो घाटा है उसको जमा करना है तत्व प्रधान। बाप ने समझाया तुम आत्मा असली परमधाम में रहने वाली हो, क्या कर और तुम सब नकली परमधाम में रहेंगे। तुम सब असली परमधाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बाद में बजाया है। असली परमधाम और नकली परमधाम ये कैसा होता है? एक मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे, जैसे सूक्ष्म बटन समझते हैं ऊपर है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म बटन कहाँ है? इसी सृष्टि पर सूक्ष्म बटन भी होता है, इसी सृष्टि पर परमधाम भी होता है प्रैक्टिकल में। मतलब क्या हुआ? जहाँ सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनती है आत्मा की, वो है सूक्ष्म बटन, और जहाँ निसंकल्पी स्टेज बनती है वो है परमधाम की स्टेज। तो संगठित रूप में मधुबन का ऐसा वातावरण बन जाए जिसमें हम पाप के साथ निसंकल्प स्टेज में रहें, दुनिया में हाल डोल आएंगे कयामत के समय में।
29 नंबर के रजिस्टर में 89 पेज पर 31-89 के प्रातः क्लास दूसरे पेज का मध्य आदि। तो तुम आत्मा असली परम धाम में रहने वाली हो, कौन सी आत्मा? तुम आत्मा, वो आत्माएं नहीं, तुम आत्मा। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे हुए होते हैं उनको कहा जाता है तुम। तो बाप से जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई अंत तक पढ़ते हैं,
और बाप ने जैसी पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ाई है उसके अनुसार जो पद पाते हैं, नलते नारायण देवता बनेगा यथाराधा तथा प्रजा बनेगा। तो वो तुम जिनके लिए इंट्रोड्यूस किया, वो बच्चे असली परम धाम में रहने वाले। माना शरीर भी होता है उनका, और शरीर होते हुए भी स्टेज कैसी होती है? निराकारी होती है। निसंकल्प स्टेज में बाप के साथ बैठते हैं, जिसका यादगार बना हुआ है कौन सा मंदिर? भीलवाड़ा मंदिर। बाद में तुमने सुख दुख का पार्ट बजाया है,
सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है, वासी भी है स्वर्गवासी और नरकवासी। स्वर्ग को राम राज्य क्यों कहा जाता, कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा जाता? ब्रह्मा ने गेट खोला स्वर्ग का, तो स्वर्ग को ब्रह्मा राज्य कहना चाहिए। राम राज्य क्यों कहा जाता, शिव राज्य क्यों नहीं कहा जाता? कारण क्या है? क्यों है गायन राम राज्य का? क्योंकि राम वाली आत्मा ही प्रैक्टिकल में ऐसा पुरुषार्थ करने के निमित्त बनती है, इसलिए राम राज्य का गायन है स्वर्ग में। वहाँ कंप्लीट सुख है, 16 कला संपूर्ण, गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रुचि धारण करना है, जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। सतो प्रधानता की पहचान क्या बताई, कैसे पता चले कि हम सतो प्रधान बनते जा रहे हैं? अगर अंदर अंदर उमंग उत्साह और खुशी रहती है तो हम सतो प्रधान बनते जाते हैं, और अगर इसका उल्टा है, रोते पीटते और चिल्लाते, तो इसका मतलब हम तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। हमें एक बाप का संग बुद्धि से नहीं है। तुम पहले इतना दुखी और विकारी नहीं थे, जब रजो ने द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हो पड़े। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी होते हैं कि हम सतोप्रधान बनते जा रहे हैं। अगर अंदर अंदर उमंग उत्साह और खुशी रहती है तो हम सतोप्रधान बनते जाते, और अगर इसका उल्टा है, रोते पीटते और चिल्लाते, तो इसका मतलब हम तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। हमें एक बाप का संग बुद्धि से नहीं है। तुम पहले इतना दुखी और विकारी नहीं थे, जब रजो ने द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हो पड़े। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी होते हैं। शराब बहुत खराब चीज है, सतगुना तो है ही शुद्ध आत्मा, वहां ये शराब आदि नहीं होती खेती की। ज्ञान की भाषा में शराब किसे कहते हैं? ये दृष्टि, जाति जाति की दृष्टि का सेवन करना, ये है शराब। जैसे शराब बहुत विकार बना, बेकारी बनाती है, क्रोधी बनाती है, कामी बनाती है, ऐसे ही ये दृष्टि की जो बेहद की शराब है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बहुत पतन में ले जाती है। 63 जन्मों में जितना पतन हुआ उतना पतन थोड़े से वर्षों में हो जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में ये सूत्र हो जाती है। तो तुम अपने बड़ों को देखो, कितने भिखारी और शराबी होते हैं। कौन बड़ों को देखो? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बड़े कहे जाते हैं उनको देखो, उनको कितना भी समझाओ कि इस शराब को छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ते ही नहीं। शुद्ध आत्मा सत्युग में जो थी वो नीचे उतरते उतरते बिल्कुल चीजें हो जाती, اس لیے ان کو رورب نرک کہا جاتا ہے. شراب ایسی چیز ہے جو جھگڑا مارا ماری نقصان کرنے میں دیری نہیں کرتے. ان کو کوئی بھی بات سمجھا تو سمجھتے ہی نہیں. اس سمے منشی کی بدھی جیسے بست رہتی ہے. مایا بڑی دستر ہے, باپ سر شکتیوان ہے, سکھ دینے والا ہے. ویسے مایا پھر بہت دکھ دینے والی ہے. کلیگ میں منشی کی حالت بھی کچھ کیا ہو جاتی ہے, ایک دم جڑجڑی دودھ, کچھ بھی سمجھتی نہیں, جیسے پتھر گرتے. یہ بھی ڈرامہ ہے نا, اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو پھر ایسی بدھی بن جاتی ہے. کیسی بدھی بن جاتی ہے؟ کیسی بدھی بتائی؟ پتھر بدھی. اس کی پتھر بدھی بن گئی تھی. اہل لیا نام کیا رکھ لیا, اہل مانا سرپ, لیا مانا لے آئی. جو باپ کی سبا میں سرپ جیسی وکاری منشی آتما کو لے آئی, جانتی تھی کہ یہ سرپ ہے, انبھو کو لیا کہ یہ سرپ ہے, پھر بھی اس کو باپ کی سبا میں لے آئی. تو ایسی آتما سے اہلیا بدھی پتھر بدھی بن جاتی ہے. ان کی بدھی میں جان کی گہرائیاں بیٹھ نہیں سکتی. کس کی پتنی تھی؟ گوتم ریشی کی پتنی. گو مانا اندریا, تم مانا شیشتم, سب سے جاستی, یعنی اندریوں کا سکھ بھوگنے میں جو سب سے جاستی آگے رہا. کون؟ ابراہیم. ابراہیم جس تنگ میں پرویش کرتا ہے وہ دیو آتما ہمارے براہمنوں کی سنگ میں بھی دنیا میں ہونی چاہیے. اس کی پتنی بننے کا جو بیس اکیس جنم کا جو پائٹ بجاتی ہے وہ اہلیا بدھی کا پائٹ ہے. ایسی اہلیا بدھی پتھر بدھی براہمنوں کی سنگ میں بھی دنیا میں جب ہیڈ بن جائیں تو یہ تھا راجا تھا تھا پرجا بن جاتی ہے. ایسا ہی کلیان چاہتے ہو؟ ایسا ہی کلیان چاہتے ہو؟ سدا کال کا کلیان چاہتے؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کلیان اہلیاؤں کبجاؤں ویشیاؤں بنکاؤں سب کا کلیان ہونا ہی ہے. لیکن ہاں وہ ٹھیک بات ہے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم کو پرشارت کون سا کرنا ہے؟ ہمیں تو سدا کال کی پراپتی کا پرشارت کرنا ہے نا. تو پتھر بدھی ایسی بن جاتی ہے جو کوئی بات بدھی میں بیٹھتی ہی نہیں. باپ جان کو بڑا سہج دیتے, بچے بچے کہہ کے سمجھاتے رہتے ہیں. ماتائیں بھی کہتی ہیں ہم کو پانچ ہیں لوکک بچے اور ایک ہے پار لوکک بچہ جو ہم کو سکھدان میں لے جانے کے لیے آیا ہے. باپ بھی سمجھتے ہیں تو بچہ بھی سمجھتے ہیں. تو جادوگر باپ آیا ہوا ہے نا, کیسا جادو کرتا ہے کہ باپ بھی بن جاتا اور بچہ بھی بن جاتا. باپ جادوگر تو بچے بھی جادوگر بن جاتے. اسے باپ بھی بنائے دیتے اور پھر بچہ بھی بنائے دیتے. کہتے ہیں بابا ہمارا بچہ بھی ہے تو باپ کو پالو کر ایسا بننا چاہیے. سورگ میں اتنا راجی تھا نا, شاستروں میں یہ باتیں نہیں ہیں. یہ بکتی مار کے شاستروں کی بھی ڈرامہ میں لود ہے, پھر بھی یہ شاستر ہوں گے. یہ بھی بات سمجھاتے ہیں پڑھانے والا ٹیچر تو ضرور چاہیے. کتنا تھوڑے ٹیچر ہیں, کتنا تھوڑے ہی ٹیچر بنتے ہیں, زیادہ ٹیچر نہیں بنتے. کتاب ہی ٹیچر بن جائے تو پھر ٹیچر کی درکاری نہیں رہے. دادا اگر گیتا شاستر ہی ٹیچر بن جائے تو پھر ٹیچر بھگوان باپ کو پڑھانے کی درکار, اس پرتی پر آنے کی درکار ہی نہ رہے. یہ کتاب آج ستنگ میں نہیں ہوتی ہے. गीता में भी है कृष्ण भगवान वाद, तो कृष्ण टीचर हुआ ना, टीचर ही पढ़ाएगा। सिर्फ भूल ये कर दी है जो नाम बदल दिए, क्या नाम रख दिया है, पढ़ाने वाला निरापारी, स्टेज में रहने वाला परमात्मा पार्टधारी, और नाम किसका डाल दिया, पाता ही स्टेज में रहने वाले ब्रह्मा का, कृष्ण की सूल का, जिसका कोई भी ऐसा एक भी फोटो नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिता है, निराकारी स्टेज वाले हैं, क्योंकि पिताएं हैं, पिता होता है बीज, बीज होता है निराकारी, उनके चेहरों से ही चित्र से ही पता लगता है कि ये निराकारी स्टेज है। लेकिन ब्रह्मा का पार्ट तो था माँ का पार्ट, वो कोई बाप का पार्ट नहीं था, माता होती है साकारी, बीज को धारण करने वाली, और बाप होता है निराकारी। तो ब्रह्मा के इतने फोटो निकले हैं, उन फोटो में से एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। तो वास्तव में कृष्ण बनाम ब्रह्मा की सोल कोई परमात्मा पार्ट नहीं बजाती, निराकारी बाप का पार्ट नहीं बजाती। गीता का भगवान निराकार बाप है, कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है, तो कृष्ण टीचर नहीं है, वो निराकार बाप ही बाप बन करके आता है, टीचर बन करके आता है, और सद्गुरु बन करके आता है। तो कितनी बड़ी भूल कर दी, कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, ये क्यों बाबा है, कोई भी हो, हमको तो शास्त्र पढ़ने से मतलब है, कृष्ण भी वही है, भगवान भी वही है, हिक्कर बिक्कर सब वही है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी आत्मा को तो समझते हो ना, आत्मा का बाप भी जरूर है और मनुष्यों का भी बाप जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप कुछ भी नहीं समझते, भाई भाई का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। तो जरूर ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में कोई बीज रूप आत्माएं हैं जो बाप का बच्चा बनती है, उस निराकारी स्टेज में रहने वाले बाप का बच्चा बनती है प्रैक्टिकल में, और वो अलग अलग धर्मों के बीज रूप होने के कारण, आपस में एक बाप के बच्चे होने के कारण भाई भाई भी माना। देवता धर्म का जो बीज है मुख्य, इस्लाम धर्म का जो मुख्य बीज है, बौद्ध धर्म का जो मुख्य बीज है, क्रिश्चियन धर्म का जो मुख्य बीज है, चार मुख्य धर्म है, चारों के मुख्य चार बीज हैं, और उन चारों बीजों का एक बाप जरूर प्रैक्टिकल में कभी हुआ है, गायन भी है शास्त्र में, मानसी शक्ति का। ब्रह्मा के सबसे बड़े चार पुत्र हुए मानस पुत्र, उनका नाम क्या दिया गया, सनक, सनातन, सनंदन और सनक कुमार। वो चार बीज ही वास्तव में चार धर्म की बीज रूप आत्मा है, परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे बनते। तो उस समय का गायन है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई, तो भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए, जरूर उनका बाप भी होगा, जरूर का मतलब प्रैक्टिकल में होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रहती, भगवान वाद ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानी नहीं करते हैं, बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर वन सुला गोरा तो सांवरा बनते, तुम्हें समझते हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे, बाप को याद करने से ही हम ये बनेंगे, अभी हम वैश्यालय में है। इनको कहा जाता है रावण राज्य, राम राज्य को कहा जाता है शिवालय, शिवालय और वैश्यालय में क्या फर्क हुआ, शिवालय में सिर्फ शिव की पूजा करते हैं सब, चारों तरफ जो भी देवी देवताएं बैठे हुए हैं किसकी पूजा करते हैं, एक शिव की पूजा करते हैं, एक की मान्यता करते हैं,
एक को ऊंचा समझते हैं और वैशालन वैसे क्या करती है, अनेकों को पूजा करती है, अनेकों को ऊंचा समझती है। तो वैशाल और शिवाला में फर्क तो बहुत है। सीता का राम उसने तो त्रेता में राज लिया, इतने भी समझ की बात है। दो कला कम कही जाती है, छठी वह उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वो त्रेता और द्वापर वो है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे ये त्रेता निवासी बनेंगे, द्वापर में फिर नीचे उतरते हैं, फिर भी देवी देवता धर्म के कहे जाते हो, परंतु पतित होने के कारण आप अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप नीचे नीचे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, मुख्य बात है ही मन में नब की, तुम ही नंबर वन बनते हो। ठीक है, चौरासी का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर वन में जाते हो, लास्ट में कब आते हो? चौरासी का चक्र जब पूरा होता है तो तुम लास्ट में आ जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है, वो है बेहद का बाप, वो है बेहद का बाप। ऐसे क्यों कहते हैं? ब्रह्मा के तन में बाजू में ही बैठा हुआ है, तो मैं हूँ बेहद का बाप या ये है बेहद का बाप, ऐसे क्यों नहीं कहते? दूर क्यों कर दिया? वो है बेहद का बाप, उनको याद करना है, ऐसे क्यों कहते? किंतु बल ब्रह्मा के तन में आकर के वाणी चलाई तो भी जिस बाप के स्वरूप को याद करके पति से पावन बनना है, वह भविष्य का परमात्मा पार्ट है, जिसकी शास्त्रों में गायन है, जिसका मूर्तियां जिसकी मूर्तियां बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, वह भविष्य का पार्ट है। इसलिए यहाँ वह शब्द बोला है पुरुषोत्तम संगमी उतरी बेहद का बाप आकर के किस पीढ़ी चरक का सुख तुमको देते, कब आकर के देते? पुरुषोत्तम संगम में ऊपर आकर। तो पुरुषोत्तम संगम युग क्या 69 में पूरा हो गया? 69-18 जनवरी को आकर के बेहद का सुख दे दिया क्या? कोई नहीं कहेगा कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का वर्षा मिल गया। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आते ही शरीर छोड़ते क्या? कोई बीमारी आज से तुम्हारा शरीर नहीं छूटता है कि आज पेन हो जाए शरीर छूट जाए, या कैंसर हो जाए शरीर छूट जाए? नहीं, तुम अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ते हो। ये योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, उसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं है, लंगड़े व टेढ़े बांके आदि वहाँ नहीं होते हैं, अगर हेल्दी रहते वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। तो थोड़ी थोड़ी कला कम होती है, अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच बच्चा पाने का, पांच विधान और होना चाहिए ना, सब तो ऊंच पद नहीं करते। जो सर्विस ही नहीं करते वो ऊंच पद कैसे पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगड़ बिलाए बुलाए लोग आ जाते हैं। म्यूजियम में प्रदर्शनी में क्या अंतर है? है चाहे जड़ चित्रों की म्यूजियम या प्रदर्शनी हो, और चाहे चैतन्य चित्रों की म्यूजियम या प्रदर्शनी हो, दोनों में अंतर क्या है? म्यूजियम में लोग बिना बुलाए बिना निमंत्रण दिए आकर के इकट्ठे हो जाएंगे देखने के लिए, और प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी में बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, पंपलेट बांटने पड़ते हैं। तो म्यूजियम को कहा जाता है बेहंग मार्ग की सर्विस। पता नहीं इससे भी और कोई बेहंग मार्ग की सर्विस निकले। दो चार मुख्य चित्र जरूर साथ में हो, जब म्यूजियम होगा तो दो चार चित्र क्यों? दो चार चित्रों का भी म्यूजियम होता है क्या? तो जड़ म्यूजियम की बात नहीं, यहाँ किस तरह इशारा किया? चैतन्य म्यूजियम के लिए इशारा किया। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये तो हर जगह बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना, ये सर्विस होने की ही है। गांव गांव में सर्विस करनी है। माताएं बन पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु ये तो बहुत सहज है। बाप का परिचय देना है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी। बाबा तो बहुत अनुभवी है, एक आंख बंद रहती थी घूंघट में और एक आंख खोल करके बाहर निकलती थी। बाप कहते हैं मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो ये बाबा जानता है, बाबा बहुत अनुभवी है। मैं तो ऊपर में रहता हूँ, ऊंची स्टेज में रहता हूँ, मैं तो ये देखता ही नहीं कि कौन एक आंख से देखता है, कौन दोनों आंखों से देखता है। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। दुनिया की बातें जो भी सुनाते हैं वो सब ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। ये अनुभवी है। मैं तो मन मना बब की बातें तुमको सुनाता हूँ और शक्ति चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते हैं वो मैं बताता हूँ। ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप, टीचर और गुरु हूँ, तीनों इकट्ठा हूँ। बाप किसे कहेंगे? बाप कहते हैं जो वर्षा दे, उसको कहते हैं बाप। भले जन्म नहीं दिया हो, गोद लिया हुआ बच्चा हो, फिर भी बाप जन्म भले न दे लेकिन वर्षा को जरूर देता है, तो उसको बाप कहा जाता है। और टीचर जो एक्सप्लेनेशन दे, व्याख्या करे, तो उसको टीचर कहा जाता है। और गुरु जो सदगति करे, साथ ले जाए। तो ब्रह्मा के रूप से ये तीनों पार्ट साबित नहीं होते। न तो गुरु सदगुरु के रूप में वो साथ ले जाता है, सदगति करता है, न मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी सदगति किसी की होती है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील हो जाए, मनन चिंतनशील हो जाए। तो जब फाउंडेशन ही नहीं पड़ा तो शरीर की सदगति कैसे हो जाती? तो गुरु भी नहीं बनता उस स्वरूप से, टीचर भी नहीं बनता, और वर्षा देने वाला बाप भी नहीं बनता। ऐसी कोई ब्राह्मण की स्टेज नहीं बनती जो सुख शांति स्वरूप स्टेज हो। ऐसे वाइब्रेशन आप बच्चे धारण करें, लेकिन कराने वाला बाप होना चाहिए। टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं, पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला भी हूँ। ये सब पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मेरे आने का मकसद क्या है? ऐसे तो नहीं کہ میں خود چلا جاؤں اور تم کو ساتھ نہ لے جاؤں. شیو کی تو بارات گائی ہوئی, شنکر کی بارات نہیں ہوتی ہے. بارات کس کی ہے؟ شیو کی بارات گائی ہوئی ہے. سب آتمائیں دولہا کے پچھاڑی جاتی ہے نا. کس کی پچھاڑی؟ دولہا کی پچھاڑی. اب یہ دولہا برائڈ گروم یہ سمبندھ بنتا کب ہے؟ آتماؤں کا باپ شیو جیوتی بندو کے ساتھ بنتا ہے کیا؟ سارن سجنی کا سمبندھ نہیں بنتا ہے, وہ تو صرف آتماؤں کا باپ ہے, دوسرے سمبندھ نہیں جوڑ سکتے. آتمائیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, بھائی بہن بھی نہیں کہی جا سکتے. دوسرے سمبندھ کب جڑتے ہیں؟ جب وہ شریر میں آتے. تو بارات جائے گی, سب ساتھ جائیں گے, شنکر کی بارات نہیں ہے. واسطہ میں بارات کس کی ہے؟ آتمک کی اسٹیج میں رہنے والی آتماؤں کی بارات ہوگی. اور شیو بابا آگے آگے ہوگا, لیکن بابا شبد جڑا ہوا ہوگا. بابا کہا ایکسپلینیشن مرلی نے بتایا, بابا کہا جاتا ہے آتما اور شریر کے میل کو. بابا مانا گرانڈ فادر, نہیں تو وہ صرف بندو بندو آتماؤں کا باپ ہے. بابا بابا نہیں ہے, بابا تب بنتا ہے جب شریر میں آتا ہے. تو شیو بابا کی بارات جائے گی, اس میں بچے بندو بندو نہیں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ بندو روپ اسٹیج میں رہ کر کے جائیں گے. نراکاری اسٹیج والے بچے اس بارات میں ہوں گے, کوئی بھی ساکاری اسٹیج والا اس بارات میں نہیں ہوگا. تو سب آتمائیں دولہا کی پچھاڑی جاتی ہے نا, اس کا مطلب وہ دولہا ساکار شریر سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھا تو یہی تو پرشن پوچھا جا رہا ہے, تم اور الٹا پرشن پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو سن لو, جو بارات جائے گی تو وہ شیو بابا کی بارات شیو بابا ساکار میں ہوگا یا بندو روپ میں ہوگا؟ ساکار میں ہوگا نا, ساکار میں ہوگا تو بارات جائے گی. تو ساکار سوروپ کوئی ہوا نا, لیکن اس کو شنکر کی بارات نہیں کہیں گے. بارات کس کی کہیں گے؟ شیو کی بارات کہیں گے. بارات تو وہیں جاتی ہے جہاں سجنی ہوتی ہے. یہ سب بھکتیاں ہیں, تم سب پاروتیاں ہو, تم سب بھکتیاں ہو, تم سب سیتائیں ہو, اور باپ ہے رام, باپ ہے ایک. ایسے نہیں کہا تم سب رادھائیں ہو, کیا کہا؟ تم سب سیتائیں ہو. تو یہ سب ہیں بھکتیاں, میں ہوں بھگوان. تم نے ہم کو بلایا ہی ہے پاون بنا کر کے ساتھ لے جانے کے لیے, تو ہم تم بچوں کو ساتھ لے جاؤں گا. کہاں لے جاؤں گا ساتھ؟ ابھی بتایا کیسا پرم دھام, اصلی پرم دھام. میں تم بچوں کو اصلی پرم دھام میں لے جاؤں گا, تم بچوں کو اصلی پرم دھام میں نہیں لے جاؤں گا. تم بچوں کو اصلی پرم دھام میں لے جاؤں گا تو پاون بنا کر ساتھ لے جانا ہے. تو ہم تم بچوں کو ساتھ لے جاؤں گا حساب کتاب چک تو کر کے. باپ گھڑی گھڑی کہتے رہتے ہیں من منا بھائی, باپ کو یاد کرو تو ورثہ بھی ضرور یاد پڑے گا. وشو کی بادشاہی مل جاتی ہے نا, اس کے لیے پرشارتھ بھی ایسا کرنا ہے. تم بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا, جانتا ہوں تم نے بہت دکھ دیکھے, اب تم کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. بھکتی مارگ میں آئے بھی چھوٹی ہوتی ہے, اکال موت بھی ہو جاتی ہے. کتنی یا حسین مچاتے ہیں, کتنا دکھ اٹھاتے ہیں, دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। क्या भक्ति मार्ग में तो दुनिया भर के धंधे दौरी, यहाँ बाप क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो। मुझे याद करने से तुम्हारा मन इतना पावरफुल हो जाएगा, ये तुम मनसा सेवा से ही सारा कार्य करेंगे, अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन से ही सारा कार्य कर सकेंगे। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है, नीचे गिरने का पुरुषार्थ थोड़े किया जाता है। नीचे तो आत्मा अपने आप गिरती है, उसमें पुरुषार्थ की बात नहीं। हम पुरुषार्थ करते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घर में स्थापन करता हूँ। क्या कितने घर में स्थापन करते हैं? तीन घर में स्थापन करते हैं बाप।